وَإِن خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر ڈرو تم اختلاف سے، دشمنی سے، بَيْنِهِمَا ان دونوں کے درمیان، اگر تمہیں لگتا ہے نا کہ نہیں یہ تو بات نا بہت بڑھ رہی ہے، پانی سر سے گزر رہا. شقاق، شقاق کا مطلب ہے پھٹ جانا، شق ہو جانا ہوتا ہے نا، گیپ پڑ رہا ہے یعنی پھوٹ پڑ گئی ہے، اب لگتا نہیں ہے کہ یہ مل کے رہیں گے. عورت نشوز میں ہے اور آدمی جو ہے وہ اپنی ضد نہیں چھوڑا، اس کی سختی اتنی زیادہ ہے، اس کے اندر غصہ بہت زیادہ ہے، وہ بڑا غصے کا تیز ہے، اب کیا پیچ اپ کے لیے کریں. ابھی بھی یہ نہیں کہا طلاق طلاق طلاق، چلو جاؤ اپنے گھر، ابھی بھی نہیں. ساری چیزیں ہو گئیں، سب کچھ کر لیا، لیکن بات کچھ بن نہیں رہی، پرابلم سالو نہیں ہو رہا، تو کیا کرو پھر اب. فبعثوا حکما من اہلی وحکما من اہلیہ. دیکھیں اب گھر سے باہر بات گئی ہے، یہ نہیں ہے کہ پہلے ہی مرحلے پہ آدمی مردوں میں بیٹھ کے عورتوں کو بے عزت کرے، بیویوں کے اوپر باتیں بنائے کہ یہ تو ایسی ہیں، یہ تو ایسی ہیں. آج کے دور میں نا یہ کس چیز کو اتنا زیادہ یعنی گندا کر دیا گیا ہے، آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کوئی کارٹونز، کوئی لطیفے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے، آپ ہمیشہ دیکھیں گے عورت کو دکھایا ہوگا بیلنا ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور وہ غصے کے اندر چیخ رہی ہے، کارٹون بنے ہوتے. لطیفے آپ عورتوں کے دیکھیں گے اس طرح کے، بیویوں کے. تو یہ ہم نے اس فیملی یونٹ کو اتنا گندا کر دیا کہ آج اسی لیے جو نئی جنریشن، ہم کہتے ہیں ہم نے شادی نہیں کرنی، شادی کیا ایک مصیبت ہے. تو یہ تو بڑا پیار محبت کا تو لباس کہا گیا، یہ لباس ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کے عیب آدمی بیان کرنا شروع ہو جائے گھر سے باہر، یہ تو ایسے کرتی ہے، اس کا تو نشوز یہ ہے، یہ تو یہ کرتی ہے اور بیویاں ایسے ہوتی ہیں اور ایسے. اس نشوز کو تم گھر میں واز کرو نا اس کو، پھر چھوڑ دو بستر، پھر ودری بھوننا، پھر اگر نہیں معاملہ سالو ہوتا تو اب ہے کہ اب تم ایک حکم بٹھاؤ اس کی فیملی سے اور ایک حکم اپنی فیملی سے. یہ حکم بھی وہ ہونے چاہیے جو کوئی سینسیبل لوگ ہوں، عقل مند لوگ ہوں. اگر عورت اپنی ماں کو حکم بنا کے بٹھا دے گی تو ماں تو اپنی بچی کی سائیڈ لینے سے کبھی نہیں ہٹے گی، ٹھیک ہے، یا وہ اپنی ماں باپ کو بٹھا لے، وہ کبھی بھی ان بائس نہیں ہو سکتے، وہ ہمیشہ طرفداری کریں گے. تو کوئی عقل مند، کوئی سمجھدار، کوئی نیک، کوئی ایسا انسان جو کہ پیچ اپ کرانا چاہتا ہو. بعض دفعہ حکم ہی ایسے ہوتے ہیں بے عقل کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں تمہیں تو توڑنا ہی چاہیے یہ گھر، یہ تو کوئی اس قابل ہی نہیں، یہ آدمی اسے پیچھا چھڑاؤ، یہ ایسے آدمی کو کہتے ہیں یہ تو عورت ہے ہی ایسی، تم کیا اس کے ساتھ لگے ہوئے ہو، چھوڑو اس کو. تو حکم بھی اپنی سہیلیوں کو نہ بنا لیں، اپنے ایسے لوگوں کو نہ، سمجھدار ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. تو ایک اس کی فیملی سے سمجھدار، ایک اس کی فیملی سے سمجھدار بندے وہ بیٹھیں، اس معاملے کو دیکھیں، غور و فکر کریں، دونوں کی بات سنیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِن یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر وہ دونوں چاہیں گے نا اصلاح کرنا، کون دونوں، حکم یا پھر میاں بیوی بھی ہو سکتا ہے، کہ اگر وہ اصلاح کرنا چاہتے ہیں، واقعی ان کا یہ ہے کہ ہم نے پیچ اپ کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی صورت موافقت کی بنا دے گا، کوئی نہ کوئی کام بن ہی جائے گا، کہیں صلح صفائی ہو ہی جائے گی، کچھ گیو اینڈ ٹیک ہوگا، کچھ شرطیں وہ رکھے گا، کچھ شرطیں یہ رکھے گی، کہیں نہ کہیں آپس میں مل ہی لیں گے. اب وہ حکم بھی بیٹھے ہوئے، وہ بھی گواہ ہیں، وہ بھی واچ کریں گے کہ ہاں دونوں فالو کرتے ہیں اس چیز کو، اب آپ نے ہمیں حکم بنایا تھا. تو حکم بے جا طرفداری کرنے والے نہیں ہونے چاہیے، اور حکم ایسے ہونے چاہیے جو انصاف کے ساتھ بات کریں، جو سب کی بھلائی دیکھیں. یہ نہیں کہ وہ کوئی وکیل نہیں ہے کہ ہم نے یہ مقدمہ جیت کے رہنا، جیت میری ہونی چاہیے اور میں نے اس آدمی کو لیٹ ڈاؤن ہی کرنا ہے، وہ نہیں حکم ہے، ٹھیک ہے. اس میں جیت ہار کی کوئی بات نہیں تھی. یاد رکھیں ایک فیملی کے اندر نا، جہاں پہ بھی میاں بیوی کے معاملات ہوتے ہیں، وہاں پہ ہار ہوتی ہے، جیت کچھ نہیں ہوتی. کوئی ایک فریق سمجھتا ہے نا ہم نے اس کو دبا لیا، ہم مقدمہ جیت گئے، جیت نہیں ہوتی. جب گھر ٹوٹتا ہے تو ہار ہی ہار ہے. ان اللہ کیا نا علیمن خبیرا، اللہ تعالیٰ علم والا ہے، خبر رکھنے والا ہے، اس نے اپنے علم کی بدولت تمہیں یہ احکامات دی ہیں، اس کو پتا ہے، وہ خبیر بھی ہے، اس کو پتا ہے کس کی نیت کیا ہے، کس کی نیت جوڑنے کی اور کس کی نیت توڑنے کی، پہلے دن سے توڑنے کی نیت. اب وہ آیت آ رہی ہے جس کو، جس پہ ہم نے ورک کرنا ہے اپنی زندگی کے اندر، جو اس میں ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کہاں پہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ورک کریں، بہتری کریں اپنی. تو یہ پوائنٹس ہمیں بتا دیے گئے اصلاح کے، जिंदगी की इंस्ट्रक्शन दे दी समझने, है ना, कि तुमने क्या करना है, तुमने क्या बनना है, तुम्हारा टारगेट क्या होना चाहिए, ठीक है। ये अब आपको इस एक आयत से पता चल जाएगा, यानी इस आयत को अपनी जिंदगी का या तो गोल बना दे कि मैंने ये ऐसी बनना है, ये मेरी चाहत है कि मैं ऐसी हो जाऊं। अच्छा, अब क्या है इसके अंदर? सबसे पहले किधर अपना ताल्लुक बेहतरीन करना है, कहाँ पे आप में सबसे अच्छा होना है। वाबुदुल्लाह वला तुशरिकु बिही शैआ, अल्लाह की इबादत करो और उसमें किसी को शरीक नहीं करना। इबादत क्या चीज होती है? इबादत ये है कि इंसान अल्लाह की गुलामी में आ जाए, इंसान अल्लाह की मानने लगे। अब्द अल खुशू व तजल्लुल, खुशू झुक जाना, तजल्लुल खुशू में झुकाओ है, तजल्लुल में भी अपने आप को नीचा कर देना। और ये किसके साथ? ताजीम के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, मोहब्बत के साथ अपने आप को झुका देना। ये नहीं, ये क्या हुक्म आ गया, हमसे तो नहीं होता, ये क्या बात हो गई, ये तो नहीं मैं मानती, नहीं ये तो नहीं मेरी अकल को लगती, ये तो इबादत नहीं है। इबादत तो है ही झुकाव का नाम, खुद को गिरा देने का नाम, अल्लाह की गुलामी में खुद को दे देने का नाम, ये है इबादत। अब इबादत को हम क्या समझ बैठे हैं कि कलमा पढ़ लिया बस मैं अल्लाह की इबादत करती हूँ, बस और क्या इबादत होती है? नहीं, वाबुदुल्लाह इबादत करो अल्लाह की। जब हम रोज कहते हैं ना इय्याका नाबुदु, तो वाकई फिर अल्लाह हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं। बाज लोग अल्लाह की भी इबादत करते हैं और औरों की भी इबादत करते हैं। हाँ जी, ऐसे भी लोग होते हैं जो कईयों की इबादत कर रहे होते हैं, तो लेकिन इबादत सिर्फ अल्लाह की, गुलामी सिर्फ उस रब की करनी है। तो ये अब समझाई गई बात, और इसमें बताया गया शिर्क अल्लाह ने माफ नहीं करना, आगे आएगा। शरीक किसी को ना ठहराओ। आप सूरह नाम में पढ़ेंगे, अल्लाह ताला ने बड़े बड़े पैगंबरों का जिक्र किया, उनके नाम लिए हैं, और अल्लाह ताला ने फरमाया अगर वो भी शिर्क करते, इतने बड़े पैगंबर भी शिर्क करते जो अल्लाह के हाँ बड़े बड़े मकाम रखने वाले, नूह अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम, इतने बड़े बड़े पैगंबर भी अगर शिर्क करते तो इनके सारे अमल जाया हो जाते, सारे अमल। तो इंसान को अल्लाह ने पैदा किया और अल्लाह ही का हक है उसके ऊपर सबसे ज्यादा, लिहाजा उसको बंदगी करनी है तो सिर्फ अल्लाह की करनी है, और जितने भी आगे अहकामात आएंगे वो सारे भी इसलिए मानने हैं कि ये अल्लाह का हुक्म है, ठीक है। तो इंसान यहां से देख सकता है कि मेरी जिंदगी के अंदर अल्लाह की इबादत कितनी है, कितना मैंने अल्लाह के हवाले खुद को किया हुआ है, कितना मैं अल्लाह के आगे झुकी हुई है, कितना मामलात में और बातों में मैं कहती हूं कि मैं अल्लाह ही की मानने वाली हूं, एक आजाद जिंदगी में और एक गुलामी वाली जिंदगी में बड़ा फर्क होता है, पता है। हम अल्लाह के गुलाम किसी एक एक मामले में है या हर मामले में? हर मामले में ना। और अल्लाह की गुलामी क्या सिर्फ हाथों के ऊपर, और ये गुलाम है अल्लाह के, और पैर गुलाम है, और बाकी नहीं, आंखें गुलाम नहीं है अल्लाह की, ये किसी और की, ये मेरी गुलाम है, ऐसे है, या सारा का सारा जिसम अल्लाह का गुलाम, सारा है ना अल्लाह का गुलाम। तो फिर ये जुबान, आजाद जुबान में और गुलाम जुबान में फर्क होना चाहिए कि नहीं? फिर जुबान जो गुलाम है वो तो आका का हुक्म के मुताबिक ही चलनी चाहिए, क्या ख्याल है? और अच्छा, आंखें ये मेरी गुलाम है या ये भी अल्लाह की गुलाम? अगर ये अल्लाह की गुलाम है ना, तो फिर तो इन आंखों को वही देखना चाहिए जो रब ने, जो इसके मालिक ने जायज किया है देखना, फिर मेरी मर्जी से तो नहीं देखनी चाहिए, क्या ख्याल है आपका? या फिर कुछ चीजों को मैंने अपना गुलाम बनाया हुआ है, कुछ अल्लाह के गुलाम, देखना चाहिए कि मैं कैसी गुलाम हूं। ओवरऑल अपने आप को जान चाहिए, ये कान जो है ये अल्लाह के गुलाम है कि मेरे हैं? हाँ, अल्लाह ने मुझे मेरे हवाले किया हुआ इनको, मेरा इम्तिहान लेने के लिए कि मैं क्या सुनती हूँ क्या नहीं सुनती, मगर मैं कहती हूँ नहीं, मैंने अपनी मर्जी करनी, मेरी मर्जी जो होगी वो सुनूंगी मैं, तो गुलामी तो ना हुई फिर, गुलामी तो झुकाव है, झुकाव के साथ इताअत करना, मोहब्बत के साथ इताअत करना, ये है इबादत,
मोहब्बत के साथ झुक जाना किसी के सामने, अपने आप को जलील कर देना, नीचा कर देना, ये है इबादत। इबादत समझे ही नहीं तो कहते हैं इबादत हम अल्लाह की करते हैं। कैसे अल्लाह की इबादत करते हो तुम? डिटाई से कहते हो हमारी मर्जी, हम जो मर्जी करेंगे, नहीं हम मानते, मैं तो नहीं ये कर सकती, ये कैसे। हाँ एक बंदे से गलती से कुछ चीजें हो जाती हैं और होंगी होंगी, बहुत दफा होंगी, नजर भी भटकेगी, जुबान भी फिसल जाया करेगी, मगर एक ढिठाई के साथ बस कहना नहीं मैं तो नहीं कर सकती, हमसे तो नहीं ये होता, ये क्या बात हुई। वद्रिबु हुन्ना का क्यों कहा गया यहाँ पे? ये तो जो औरतों के हकूक इसके अंदर वो गए, हमारे तो बड़े हकूक हैं। तो ये चीजें फिर अब्दियत थोड़ी हुई। आपको किसने पैदा किया है? आपको कौन चला रहा है, कौन खिला रहा है, कौन पिला रहा है, कौन सस्टेन कर रहा है, किसने, किसकी वजह से आपकी जात कायम है? ये सांस किसकी मर्जी से चल रही है, किसकी मर्जी से ले रही है सांस? तो फिर क्या इस जिस्म के ऊपर उसका हक नहीं होना चाहिए कि जैसा वो कहे वैसे करो? मैं छोड़ दें फिर, मैं कुछ नहीं है, गुलाम की कोई मैं नहीं होती, ये कौन सी गुलामी है कि कुछ मानूंगी कुछ नहीं मानूंगी, जो अच्छा लगता है वो मानूंगी, जो बुरा लगता है वो नहीं मानूंगी, जो आसान लगता है वो मानूंगी, जो मुश्किल लगता है वो नहीं मानना मैंने, ये कौन सी गुलामी है बताएं? तो इबादत तो सिर्फ अल्लाह की है, उसके साथ अपने नफ्स की इबादत नहीं कर सकते कि उसको भी इला बनाया, तो शिर्क नहीं करना। आगे शिर्क पे और बात आएगी, आगे चलते हैं। वबिलवालिदैनि एहसाना, और वालदेन के साथ एहसान, सबसे पहले अल्लाह के बाद जो जिंदा इंसान है उनके उनमें जिसका हक सबसे ऊपर है वो है वालदेन, उनके साथ एहसान। एहसान, अच्छा एहसान क्या चीज होती है? एहसान हुसन से है। एक होता है अदल, एक होता है एहसान। अदल और एहसान में फर्क है। अदल है पूरा पूरा देना किसी को, जैसा किसी ने किया वैसा ही करना। एहसान है हक से ज्यादा देना, हक नहीं भी बनता तो देना, ये होता है एहसान। वालिदैन और जितने भी आगे ये आए हैं ना, वो उनके साथ एहसान का कहा गया है, हक से भी ज्यादा और हुसन के साथ, अच्छे तरीके के साथ। टिट फॉर टैट ये एहसान नहीं होता। एहसान वन वे ट्रैफिक का नाम है, समझ लें, बस मैंने करते ही जाना, मैंने करते ही जाना, मैंने अच्छा ही करना, मैंने अच्छा ही करना, मैंने अच्छा ही करना, ये एहसान वन वे ट्रैफिक, ये टू वे नहीं है। वो क्या करता है, वो भी कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये नहीं एहसान। ये इसलिए बता रही हूं क्योंकि बाकी सबके लिए भी एहसान आया, अदल नहीं आया, इसलिए सबके साथ हमें ये एहसान, सिर्फ वालदैन के साथ नहीं, जितने आगे बताए गए ना इनके सबके साथ एहसान की बात है। हाँ दर्जे फर्क होंगे लेकिन सबके साथ एहसान की बात है, अच्छाई की बात है, हक से ज्यादा देने की बात है, भलाई की बात है। तो अब आप देखें यहां पे वालदैन के साथ एहसान क्या होगा। हम कहते हैं एहसान का मतलब ये है उनकी नाफरमानी ना करो, जो तो हम कोई नहीं नाफरमानी करते, वैसे उनके ऊपर नाफरमानी क्या करनी है, वो कुछ कह ही नहीं सकते हमारे सामने, कुछ बोल के तो देखें, वो हम ऐसे गुस्से से देखेंगे कि वो दोबारा कुछ बोलेंगे नहीं, वो तो बेचारे यही सोचते रहते हैं कि किसी तरह हमारे बच्चे खुश रहें, बस बच्चों को कोई बात ना गवार ना गुजर जाए, वो इतना डरते हैं। तो ये एहसान नहीं है। बाज लोग कहते हैं हमने क्या बुरा किया इनके साथ, बुरा क्या, आपको कहा गया एहसान, एहसान में आता है उनकी खिदमत करना, उनको वक्त देना, उनके ऊपर खर्च करना, उनके साथ नाइस होना, एक्सेलेंस के लेवल पे उनके साथ मामला करना। बाज लोगों को अपने वालदेन से बहुत शिकायतें होती हैं कि वो ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, जो भी वो करते हैं, वो भी इंसान है जाहिर है, अब वालदेन कोई परफेक्ट मखलूक तो है नहीं, वालदेन फरिश्ते नहीं होते, वालदेन से गलतियां भी होती हैं, तरबियत में बच्चों की बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, बहुत सारे काम उन्होंने नहीं सही किए होते, जैसे रेज करना चाहिए था वैसे नहीं किया होता, ठीक है इंसान है वो, आप उनको इंसान ही समझे, क्योंकि बाज लोग शायद वालदैन को अंबिया समझ लेते हैं या फरिश्ते समझ लेते हैं, तो ना वो नबी है ना फरिश्ते हैं जो कि किसी गलती से गुनाह से महफूज हो, उनके उनके अंदर भी गलती है, ठीक है तो ये मान लें पहले, तो उसके बाद ये देखें कि मेरा काम क्या है, वो उनके अंदर जितनी भी गलतियां, मेरा काम है एहसान, और एहसान में ये आता है कि उनका दिल खुश कर देना, बस ये समझ लें। अब दिल किसी का तो खुश होता है कि आप उसके ऊपर स्पेंड करें, कोई वालदेन ऐसे होते हैं कहते हैं भाई पैसे भेजो, कई वालदेन ऐसे होंगे जो कहते हैं नहीं हमें टाइम दो, पैसों की नहीं हमें, कई वालदेन कहते हैं कि बच्चे जो हैं वो उनके साथ अच्छी तरह बिहेव करें, मोहब्बत दें उनको, तो वो उनको पैसा नहीं चाहिए, उनको कपड़े नहीं चाहिए, उनको आपके गिफ्ट नहीं चाहिए, उनको अफेक्शन चाहिए कि आप शो करें अपना लव, अपनी केयर। डिफरेंट तरह के हैं। अब आप उसके अंदर देखिए आपके वालदैन किस चीज से खुश होते हैं, वो चीज करें। आप सरअसल हमने जो नसीहतें फरमाई थी, फरमाया तुम उनके आगे ना चलो, उनसे पहले ना बैठो, उन्हें उनके नाम से मत पुकारो। आज तो वो बात आती है ना कि किसी के वालदैन को लानत ना करो, गाली ना दो, क्योंकि वो तुम्हारे वालदैन को गाली देगा तो ये बुरा है। तो अपने वालदैन को गाली ना दो। कैसे लोगों ने पूछा, वो हैरान कि अपने वालदैन को तो कोई गाली नहीं दे सकता। तो आप सरअसल ने फरमाया जब तुम दूसरे के वालदैन को दोगे, वो तुम्हारे वालदैन को देगा, ऐसा हो जाता है। लेकिन आज लिटरली ऐसे लोग हैं जो अपने खुद वालदैन को गालियां देते हैं, अपने वालदैन को। जैसे आज का वो वक्त आ चुका है जिसके अंदर लौंडी अपने आका को जन्म देगी, वो वाली बात हो चुकी है, वो ट्रू हो चुकी है। तो वालदैन का वो मकाम है, वो इनका मर्तबा है, और खास तौर पे वालिदा का, कि उनके साथ सबसे ज्यादा जिसका हमारे जो हमारे हुस्ने सलूक के मुस्तहिक है पूरी दुनिया में, किसके साथ हम बेस्ट बिहेव करें। फ्रेंड नहीं आता, फ्रेंड्स के साथ करो, काफरों के साथ करो, मुसलमानों के साथ करो, नेक मिले तो उसके साथ करो, नहीं, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ, 3 दफा फरमाया तुम्हारी माँ। और बाप को क्या फरमाया कि जन्नत के दरवाजों में से दरमियानी दरवाजा है, तुम चाहो उसको जाया कर दो, तुम चाहो उसकी हिफाजत करो। आप उसको जाया भी कर सकते हैं, उसकी हिफाजत भी कर सकते हैं। जन्नत के दरवाजों में दरमियानी दरवाजा, अगर वो फौत हो गए तो बताया गया कि उनकी लिए इस्तिगफार करो। एक शख्स नबी अलैहिस्सलाम के पास आया, पूछा माँ बाप के फौत होने के बाद उनके साथ किस तरह नेकी करो। आपने फरमाया उनकी नमाज जनाजा पढ़ो, उनके लिए मगफरत की दुआ करो, उन्होंने लोगों से जो वादे किए हुए उनको पूरा करो, उनके दोस्तों की इज्जत करो, यानी जिनके साथ वो बैठ के खुश होते थे उनकी इज्जत करो, जिनके साथ वो सिला रहमी करते थे उनके साथ सिला रहमी करो, यानी उनके रिश्तेदारों के साथ भी अच्छा करो। तो ये वालदेन के हकूक है, क्योंकि इंसान को वालदेन वो जरिया बनते हैं जिनके जरिए वो दुनिया के अंदर आया, इसलिए उनका इतना बड़ा हक है। अल्लाह ने पैदा किया लेकिन वो जरिया तो बने ना, तो ये वो जरिया है, इसलिए इनका हक है। इसी जिमन के अंदर फिर उलमा कहते हैं कि यहीं से फिर नानी नाना, दादी दादा, असातिज़ाए कराम, इन सब के साथ एहसान करने की बात आ जाती है, क्योंकि ये भी वालदेन ही के दर्जे के अंदर आ जाते हैं। आज हम कहते हैं लो तो साझा कराम के साथ क्या एहसान करना, हम इनको फीस देते हैं तो पढ़ाते हैं ना, तो क्या हो गया, उनको तो हम कुछ समझते ही नहीं है, बल्कि अपने बच्चों के सामने उनकी बुराइयां करते हैं और उनकी बेइज्जतियां करते हैं, तो क्या वो उनकी रिस्पेक्ट करेंगे। तो इसलिए जहां पे सब माशरे बिगड़ जाएं, आज हमने तरक्कियां तो ये कर ली कि हम चांद तक पहुंच गए, लेकिन उसके बाद हमारे अखलाक का क्या हाल है, अखलाकी तौर पे हम इतने जवाल का शिकार हैं कि वो नीचे ही नीचे जाते जाते। तो इन लोगों में जहां पे दीन ईमान नहीं है वहां पे तो बिल्कुल ही वालदैन को पूछा नहीं जाता, लेकिन जो मुसलमान है उसके लिए पहली चीज ये है कि वालदैन जिंदा हैं तब भी उनका हक है, फौत हो गए तब भी उनका हक है। और उसके बाद वबी ज़िल क़ुरबा, क़राबतदार, रिश्तेदारों की बात तो इतनी दफा कुरान पाक में आ चुकी है। और आप देखेंगे ये जो जितने बताए जा रहे हैं ना हमें, ये हमारे करीबी लोग होते हैं, इनके साथ हमारा उठना बैठना सलूक, इनके साथ हमारा ज्यादा, इनके साथ हमारी मामलात चलते हैं, इसी वजह से यहीं पे गड़बड़ ज्यादा होती है, यहाँ पे प्रॉब्लम ज्यादा होते हैं। ज़िल क़ुरबा के साथ भी क्या करना है, एहसान, ये नहीं कि वो बुलाएं तो मैं बुलाऊं, वो फोन करें तो मैं फोन करूं, उसने कितनी दफा किया मैंने कितनी दफा किया, जब किसी से बात करें उसी वक्त ताने, उसी वक्त गिले शिकवे, अच्छा याद आ गई है हमारी, अच्छा ये अब हाँ आप लोग तो बहुत अमीर हो गए, हम तो गरीब हैं, हमें क्या पूछेंगे आप, अगर अगर थोड़े कम है तो फिर इस किस्म के ताने, अगर अगर रिश्तेदार अमीर हो जाते हैं तो फिर उस तरह के ताने और फिर उस तरह की बातें, तो ये नहीं करनी। अगर आपके रिश्तेदार गरीब भी हैं तब भी उनको उसी तरह इज्जत देनी है जैसे अमीर रिश्तेदारों को देनी है, अगर अमीर रिश्तेदार है तो उनके साथ भी कोई ऐसी वो नहीं करनी कि उनकी ऐसी चापलूसी या उनकी ऐसी खुशामदी करना शुरू हो जाए कि वो ही सब कुछ है और उनके सामने दूसरों को हकीर करने लगे। तो रिश्तेदारी निभाना एक बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे अक्सर ना आपको कोई अप्रिसिएशन मिलती है, ना आपको कोई बदला कुछ ऐसा मिलता है, ना ही कोई रिकग्निशन कोई मिलती है, तो इसलिए। और यहां से अक्सर तकलीफ बहुत ज्यादा मिलती है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे आप एक दूसरे के साथ बहुत कैजुअल होते हैं, आप एक दूसरे के साथ बहुत इसको कहेंगे इनफॉर्मल, बेतकल्लुफ होते हैं आप। बेतकल्लुफी के अंदर इंसान ऐसी ऐसी बातें कह जाता है दूसरे को जो दूसरे को हर्ट भी कर जाती है, और हम अपना हक समझते हैं कि हम रिश्तेदार हैं, मैंने ऐसा क्या कह दिया। आप वो बात किसी बाहर वाले को नहीं कहेंगे, लेकिन उठा के मुंह पे मारेंगे अपने रिश्तेदार के, इसलिए कि वो रिश्तेदार है, उसका ये कसूर है, क्योंकि आप उसके साथ बहुत फ्रैंक हैं। फ्रैंक होने का मतलब ये है कि हम किसी को बेइज्जत कर दें, या किसी का मजाक उड़ाएं, या किसी के ऊपर बातें बनाएं, ये फ्रैंकनेस होती है। तो रिश्तेदारी को संभाल के चलना पड़ता है, इसकी केयर करनी पड़ती, तब रिश्ते बनते हैं, ठीक है। और रिश्तेदारी के साथ एहसान क्या है, उनके साथ अच्छा सलूक करना क्या है, ये नहीं है कि जो रिश्तेदार हमसे मिले हम उससे मिले, जो नहीं मिले तो हमारी बला से, वो जो हम मर्जी करता रहे, हम उसके कोई मोहताज है, हम कोई लेके खाते हैं उससे, नहीं। इस वजह से उसके साथ करना है कि अल्लाह ताला ने फरमाया एहसान करो, इस वजह से नहीं करना कि वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं। तो हुस्ने सलूक किया है उनके साथ, उनके बारे उनकी खबर गिरी रखें, उनके साथ मिले जुले, उनके साथ अच्छा मामला करें, उनकी खैर ख्वाही रखें, उनकी उनके बदखोइयां ना करते फिरें दुनिया के अंदर, उनके साथ बुरे मामले ना करें, उनको ताने ना दें। अब यहाँ पे बुराइयां तो सारी एक तरफ रख देना, हम कहें कि ना तो मैं ताना देती हूँ ना मैं बुरा करती हूँ, लेकिन मैं अच्छा भी नहीं करती, तो ये भी नहीं है। एहसान के अंदर ये नहीं कि आप बुरा नहीं करते तो आप अच्छा कर, अच्छा आपको करना है तो आप कहते हैं मैं कौन सा कुछ बुरा करती हूँ, ठीक है कॉल नहीं करती तो मैंने बुरा भी तो नहीं किया, नहीं। हम देखें कि हमारे रिश्तेदारों में किसी को कोई जरूरत तो नहीं है, उसकी जरूरत पूरी करने की कोशिश करें। तो रिश्तेदारों में कौन आ जाते हैं, जितने भी आपके बाप की तरफ से माँ की तरफ से सारे रिश्तेदार ही बनते हैं, इनके हक हैं हमारे ऊपर, हक, ये नहीं कि हम एहसान कर रहे हैं इनके साथ अच्छा करके, इनका हक है हमारे ऊपर। तो इसके अंदर इसमें भी वन वे ट्रैफिक की समझ लें, और यही समझ के चलेंगे, अब आगे वाला अच्छा करे या ना करे इसको छोड़ दें, ठीक है। अब उनकी वो कैसे हैं, अब कहीं हम दूसरे मुल्कों में आ जाते हैं, वी नेवर केयर, वो मरे जिए जो मर्जी हो, हमें क्या इससे, हम अपनी जिंदगी में मगन है, हमें क्या रिश्तेदार जो जहां मर्जी दे रहे, नहीं। वो चूंकि आपके रिश्तेदार हैं, रिश्ता है उनका आपके साथ, आपको उनकी खबरगिरी रखनी है, उनको भूल नहीं जाना, ठीक है। आप उनके मोहताज नहीं है, आप उनसे लेके नहीं खाते, लेकिन अल्लाह का हुक्म है ना, आपकी कोई मजबूरी नहीं है, ना आपका कोई काम है उनकी तरफ, ना कोई ऐसा कोई उनसे काम आपको बन जाएगा आपका, तो अब क्या होगा, सिर्फ अल्लाह की खातिर करना होगा। चाहे वो अब आपके साथ सीधे मुंह बात नहीं करते, आपको ताने देते हैं, आपको गिले शिकवे करते हैं, फिर भी आपको सब्र का घूंट पी के उनके साथ क्या करना है, एहसान। जब ये आयत हम अपनी जिंदगी में इन्फोर्स करेंगे ना, तब पता चलेगा हमारे अंदर कितना चेंज आया इस कुरान के जरिए। कभी कभी रिश्तेदारों के अंदर हमारी अपनी औलादें हैं, हम अपनी औलादों को इतना हर्ट कर देते हैं, उनको ताने दे दे के, उनके उनकी बुराइयां उनको कर करके, कि कराबत में तो सबसे पहले आपकी औलाद ही आ जाती है ना। बच्चों के बहुत सारे शिकायतें होती हैं अपने पेरेंट्स के, क्योंकि हम सोचते हैं हमारे बच्चा हम जो मर्जी इसको कह दें, उनको ऐसी ऐसी बातें सुनाते हैं कि वो उनके दिल छलनी हो जाते हैं। और हमारा क्या होता है, तो क्या हो गया, मैंने अगर ऐसे कह दिया तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, क्या आप किसी और को भी ऐसा कहेंगे। लेकिन वही आपकी गली सड़ी और बिल्कुल ऐसी कड़वी बातें सुनने के लिए वही डिजर्व करता है जो आपका सबसे करीबी है, उसको खूब तीर मारते हैं, क्योंकि ये मेरा करीबी है, ये उसकी सजा है कि वो आपके करीबी है, वो आपका खून का रिश्ता है, उसको तो सजा हो गई ना, क्योंकि आपकी सारी कड़वी कसीली बुरी सारी किस्म की गुस्से सब उसके ऊपर निकल रहे हैं, और उसको बर्दाश्त करना है। और हम एंड में क्या कहते हैं, हमें जरा भी अफसोस नहीं होता ये सब करके, हम कहते हैं तो क्या हुआ, तो क्या हो गया अगर मैंने ऐसा कह दिया तो, बहुत कुछ हो जाता है, यहीं से दरारें पड़ती हैं रिश्तों में फिर। तो ये रिश्ते चाहे बच्चे और वालदैन के दरमियान हो, चाहे बहन भाइयों के दरमियान हो, चाहे आप कजन्स हैं, चाहे कुछ भी, यहाँ पे ना थोड़ा देखभाल के अपनी जुबान को इस्तेमाल किया करें, ठीक है। इतने इनफॉर्मल ना हो जाए कि इनफॉर्मल होते होते आप लोगों के दिलों को हर्ट करते हैं, उनको वो तकलीफ हो कि सारी जिंदगी उनको आपकी बातें ना भूलें, ऐसा ना करें, ठीक है। वल यतामा वल मसाकीन, यतीम और मिसकीनों के साथ भी क्या है एहसान। आपको बताया भी था पहले भी कि यतीम, जिस घर में यतीम पलता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीम के साथ उसने सलूक करने को और उसकी किफालत करने वाले के बारे में क्या फरमाया कि वो मेरे साथ जन्नत में ऐसे होगा। और आपने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो उंगलियां मिला के दिखा दी कि ऐसे होगा मेरे साथ वो जन्नत में, सुभान अल्लाह, यतीम की किफालत करने वाला। तो यतीम बच्चों के साथ मेहरबानी का सलूक, उनके साथ रहम का सलूक, चाहे वो यतीम बच्चे अमीर हैं या गरीब हैं, और वहां पे ही अपने बच्चों को रख के देख लें कि अगर मेरे बच्चे इसकी जगह होते तो क्या होता। हमने शुरू में पढ़ा था ना ऐसी है वली अख्शल्लदीना वली आयत थी ना, तो डरना चाहिए इस चीज से कि अगर मेरे बच्चे ये होते तो। और मिस्कीन, मिस्कीन वो है जो हैंड टू माउथ है, वो है जो अक्सर इनको लोग ना, यानी वो जिसको कहते हैं ईजी नहीं, यानी उसका हाथ खुल नहीं सकता, बस हाथ तंग ही रहता है। तो एक चीज पूरी करता तो दूसरी नहीं होती, दूसरी पूरी करता तो तीसरी, क्योंकि कमी रह जाती है, तो वो मिस्कीन है। हम कहते हैं ना इनके घर तो है ना, घर है तो उसके पास दवाई के पैसे नहीं है, नौकरी है लेकिन बच्चों की फीस अदा करता है तो ग्रोसरी में से कमी करनी पड़ती, तो वो बस यानी आसूदा हाल जिसको कहते हैं वो नहीं है, वो मिस्कीन है। अब मिस्कीनों को बाज दवा हम, हाल ये होता है कि हम दे तो देते हैं, उनको पैसे दे दिए लेकिन इज्जत नहीं देते उनको, अपने से जब बात करते हैं ना तो पता चलता है हमारे रवैये में कि ये हम उसको बता रहे होते हैं अपनी बातों से कि आप हमारे बराबर नहीं है, आप जहां हो ना वहीं पे रहो। और एक बात याद रखिए, चाहे यतीम हो, चाहे मिस्कीन हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे हमसाया हो, आगे उनकी भी बात आ रही है, नेकी जो होती है ना ये नहीं होती कि कोई आपसे कुछ आस करे तो चलो वो भी नेकी हो गई, अब किसी ने आपसे सवाल किया तो आपने उसको उसका दे दिया। आपको मैं बताऊं एहसान क्या है, एहसान के लेवल पे नेकी, खूबसूरत तरीन नेकी अगर आपने करनी है ना तो वो ये होती है कि कोई अभी कहे भी नहीं और आप पहले ही उसकी वो जरूरत पूरी कर दें, आप पहले ही उसके काम आ जाएं। वो अभी बोला नहीं, वो आपको कहता नहीं है कि मुझे ये चाहिए, मुझे छोटी सी कोई चीज है, मेरा छोटा सा काम है, ये मुझे कर दें। आप इतने अवेयर हैं, आप इतने जागे में हैं, सोए पड़े नहीं रहे क्या, वो पता ही नहीं आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, मरे जिए लोग हमें क्या, जो मर्जी, किसी की नौकरी नहीं है, किसी का बच्चों के मसले हैं, किसी का कोई स्कूल जाना है उसको कोई लेके जाने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं। आप पहले ही देख लें, आपको इतने विजिलेंट होना चाहिए, इतने अवेक होना चाहिए, आपको पता हो देखो इसका ये मसला, आप उसके कहने से पहले उसका कर दें। आपको पता है किसी से मांगना जो होता है ना, अल्लाह ना कभी किसी को वो हाथ ना दे जो नीचे वाला है, जो मांगने वाला होता है। जो किसी से मांगना होता है ना, किसी से कहना, कोई फेवर मांगनी, आस करना, वो इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है कि वो किसी को कहे मुझे इतने पैसे चाहिए या मेरा ये काम है आप कर देंगे प्लीज, कि वो आपके आगे आके झुके, वो आपके आगे मिन्नत करे, वो आपसे आस करे ना, ये उसकी इज्जत नफ्स मजरू होती है। आप उसको उस पोजीशन में क्यों लाते हैं पहले कि वो उसको कहना पड़े। असल आपकी नेकी ये है कि आप उसके बोलने से पहले इतने रेडी हो कि आपको पता हो, एक तो उसके लिए अपने इर्द गिर्द से अवेयर होना जरूरी है, किसी के हालात क्या चल रहे हैं, किसी की क्या मजबूरियां, किसके क्या मसले हैं, फिर आप उसके कहने से पहले करके दें। ये नहीं कि वो कह दे तो अच्छा चलो हम इसका ये काम कर देते हैं, बड़ा आपने एहसान झाड़ा, नहीं आप पहले करें ना, आपको नहीं पता। अब एक तो ये बात, दूसरी ये बात कि नेकी, असल बात ये होती है नेकी, ये थी कि आप नमाजी हैं, आप बड़े परहेजगार हैं, आप बड़े अच्छे हैं, वो सही है, लेकिन आप ये समझते हैं अगर कि आप नेक हैं और आप ये समझते हैं कि आपके इर्द गिर्द लोग जरूरतमंद हैं, किसी को कोई तरह की मोहताजी है किसी, लेकिन मैं बड़ी नेक हूं, मैं बड़ी तहज्जुद गुजार हूं, आप नेक नहीं है। अगर आपको यही नहीं एहसास कि कोई जरूरत में है, कोई परेशान है, आपके सामने लोग आते हैं और चले जाते हैं, आपकी नेकी बहुत बड़ी हो गई क्योंकि आप रोजे बड़े रखती हैं, आप तहज्जुद गुजार बड़ी हैं और बाकी नहीं आपको कुछ परवाह, तो ये कोई नेकी नहीं है, ये कोई नेकी नहीं है। असल नेकी ये है कि इंसान दूसरों की, अपनी ठीक है अपनी इबादत अपनी जगह, दूसरों के मामले में इतना सेंसिटिव रहे
कि इंसान के सामने कोई आता है ना तो इंसान उस पहचान जाए, समझ ले। और मिस्कीन वो भी होता है जो किसी से सवाल नहीं करता, उसको आपको खुद समझ जाना चाहिए कि इसकी देखा कैसे ये गुजारा करता होगा। अब हमारे एक रिश्तेदारों में ही कुछ होते हैं जो मिस्कीन होते हैं, हम कहते हैं नहीं लेकिन वहां से तो उसको आता है, चलो इतना तो कमा लेता है, चलो ये तो कर लेता, गुजारा तो हो ही रहा होगा उनका। नहीं, आप उनको ये ना कहेंगे गुजारा हो ही रहा होगा, आप उनके बारे में अवेयर रहें और उनकी मदद करें। तो ये है मिस्कीन के साथ हुस्ने सलूक। इस मामले में हमें देखना है कि हमारे खानदानों में, रिश्तेदारों का ये भी होता है ना कि हम अपने खानदानों में ये पता कराएं कौन मिस्कीन है कौन यतीम है, और उनके लिए हेल्प की कोशिश करें। और मैंने आपको जैसे बताया कि कभी उनको ये एहसास ना होने दे कि हमने आपको इतने पैसे दे दिए, अब बस आप अपनी जगह पे रहो, बस यही आपका मकाम है, आप इधर बैठ के खाओ, आप हमारे दूसरों के साथ नहीं बैठ सकते। जब हम बड़ी पार्टी करें जिसमें अपने स्टेटस के लोगों को बुलाएं तो उसमें हम आपको नहीं बुला सकते, क्योंकि आप क्या, आपका वो स्टेटस ही नहीं है। और इस तरह का ना करें, उनको वो ही मकाम दें जैसे आप दूसरों को देते हैं, ताकि उनके अंदर एहसासे महरूमी ना हो। हम तो बहुत ही अपने मिस्कीन रिश्तेदारों को भी वो सलूक नहीं देते, और तो किसी को क्या देना है। और दूसरी एक बहुत अहम चीज है, वो ये है कि जब हम किसी की मदद करते हैं, चाहे वो मिस्कीन है यतीम है कोई, हम हमेशा कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन जरूर रख लेते हैं, चाहे पैसों की नहीं रखते, हमें पता है इसने हमें क्या पैसों में रिटर्न करना है, लेकिन कोई सर्विसेज की एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं। इसी वजह से हम क्या करते हैं, देखें ये डायलॉग हमारा कॉमन है, हम कहते हैं इनके साथ जितना मर्जी कर लो ना, जब हमें जरूरत पड़ती तो ये कहीं आते ही नहीं है, कहीं नजर ही नहीं आते। इसका मतलब यू एक्सपेक्टेड राइट, जब आपने उसके साथ अच्छा किया था तो आपने एक्सपेक्ट किया कि जब मुझे कोई काम पड़ेगा तो ये मेरे घर में आके मेरी हेल्प कराएंगे, या मूव कराएंगे, या मेरा और कोई काम होगा तो उसके अंदर ये मेरे लिए भाग दौड़ कर लेंगे, मैं इसको वहां भेजूंगी, मेरे लिए वो चीज ला देगी या कर देगी। उससे हम सर्विसेज एक्सपेक्ट करते हैं। जब आप किसी के साथ अच्छा करो तो देने में वापिस नहीं देखना कि इसने हमें क्या देना है, भूल जाना है, चाहे वो नौकर है चाहे वो कोई भी और गरीब मिस्कीन है। वल जारी दिल कुर्बा, और पड़ोसी रिश्तेदारों और पड़ोसी अजनबी, दो पड़ोसियों का जिक्र यहाँ पे किया गया, एक वो जो पड़ोसी है लेकिन रिश्तेदार भी है। आपको पता है एक पड़ोसी वो होता है जिसका एक हक है, एक का दो हक है, और एक के तीन हक है। पहला जिसका एक हक वो है जो गैर मुस्लिम आपका पड़ोसी है, लेकिन वो उसके साथ भी एहसान करना है, इसलिए क्योंकि चाहे वो गैर मुस्लिम है काफिर है लेकिन वो आपका पड़ोसी है, आपके पड़ोस में रहने की वजह से उसका हक है आपके ऊपर। इसी तरह दो रिश्तेदार, हक किस पड़ोसी के हैं, जो रिश्तेदार भी हो, और तीन हक किस पड़ोसी के हैं, जो मुसलमान भी है रिश्तेदार भी है और पड़ोसी भी है, उसके तीन हक हैं आपके ऊपर। तो मुस्लिम नेबर के ज्यादा हक हो गए और रिश्तेदार मुस्लिम नेबर के और भी ज्यादा हक हो गए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे इतना ज्यादा जिब्राइल अलैहि सलाम ने हमसाईगी के बारे में इतनी तलकीन की, इतनी तलकीन की कि मुझे ये लगा कि अब रिश्तेदारों को विरासत में भी लगता है हकूक मिल जाएंगे। मुझे ये खटका हुआ कि गालिबन आज पड़ोसी को भी विरासत का वारिस ठहरा दिया जाएगा, इतनी ज्यादा उन्होंने नेबर्स की ताकीद की। उनके साथ भी एहसान करना है, अजियत अजियत देना तो भूल जाए, अजियत तो भूल जाए, अजियत तो कहीं आती ही नहीं है, एहसान। हम कहते हैं ठीक है हम कोई अजियत थोड़ी इनको दे रहे हैं, हम क्या करते हैं इनके साथ, लेकिन एहसान भी नहीं कर रहे ना। कयामत के दिन जो सबसे पहला झगड़ा आएगा ना अल्लाह के सामने, वो दो पड़ोसियों का होगा। जी हाँ, मुस्नद अहमद की रिवायत है ये। तो यहाँ पे पड़ोसियों को अलग अलग कर दिया गया कि दोनों तरह के पड़ोसियों का हक है आपके ऊपर, चाहे अजनबी है, आप उसको नहीं जानते थे, अब आपके नेबर में आके रहने लगा, या आप कहीं मूव हुए आप उनको नहीं जानते, मगर आपके जिम्मे लगा दिया गया कि उसका हक है आपके ऊपर। अब आपने उसको अजियत तो कभी भी नहीं देनी, अब हम कैसे अजियतें देते,
कभी गाड़ी उनके घरों के आगे खड़ी कर देते हैं, कभी उनकी ड्राइवे ब्लॉक कर देते हैं, कभी तेज आवाज में म्यूजिक लगा देते हैं, कभी अपने घर के अंदर कोई भी कूड़ा करकट है तो उनके घर के सामने पास फेंक देते हैं, कभी अपना घर का दीवार इतनी ऊंची कर देते हैं कि उनकी सारी धूप ही रुक जाए, कभी गाड़ी का हॉर्न इतना बजाते हैं कि वो डिस्टर्ब हो, कभी हमारे मुल्कों में तो कॉमन है बच्चों की लड़ाइयों पे हमसायों की लड़ाइयां हो रही होती। इसी तरह उनके घरों में तांका झांकी करना, उनकी जासूसी हरकत करते रहना, उनकी नकलो हरकत को नोट करते रहना, कौन आया उनके घर से, कौन गया, किस टाइम पे ये उठते हैं, किस टाइम पे बैठते हैं, किस टाइम पे ये निकल रहे हैं, कभी ये आ रहे हैं, आए हैं कि नहीं आए, आज गाड़ियां इनके घर कितनी खड़ी हैं, कोई बुलाया हुआ इन्होंने लगता है अपने घर, फिर उनको उसके बारे में पूछना और इससे अजियत देना, कहाँ गए थे, कहाँ से आए थे, क्यों गए थे, टाइम बे टाइम पड़ोसियों के घर पे जाके विजिट करने बगैर उनसे उनकी मसरूफियत देखे, हमसाये होने के नाते इंसान को बहुत सारी बातें दूसरों की पता चलती है, क्योंकि जाहिर है आपके करीब होता है दूसरे का घर, अब आपको कई उनकी बातें जो दूसरों को नहीं पता होती वो आपको पता चल जाती हैं, लेकिन इनको भी राज रखना होता है, ये अमानतें होती हैं हमसायों की, ये नहीं है कि उनका इश्तेहार बना दे, हाँ हमें तो पता है, पता है इनके घर कोई आया हुआ था कल, इनके घर बड़ा आना जाना है, आदमी इनके घर बहुत आते हैं, इस तरह की बातें करना, ये क्या हमसाये के साथ एहसान है, पता नहीं कहाँ गई हुई थी ये कल, इनका तो कोई बच्ची का रिश्ता लगता है देखने आया होगा, इतनी गाड़ियां खड़ी हैं, फलां निकल के गया था इनके घर, फलां आया था इनके घर से, ये एहसान नहीं है, हम कितनी तरीकों से अजियत देते हैं अपने अपने हमसायों को, और फिर भी सोचते हैं हम तो उनके साथ एहसान ही कर रहे हैं ना, ये एहसान नहीं होता, तो अपनी अजियत से उनको बच जाएं और उनके साथ भलाई करें। अब हम ऐसे मुल्कों में रहते हैं जो गैर मुस्लिम मुल्क है, तो वहां पे भी हमसायों के हकूक हैं, और ये नहीं कि चलो ये तो मुसलमान है ही नहीं, इनके साथ तो बुरा ही सलूक करना, ऐसे नहीं। हज़रत आयशा रजी अल्लाह तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मेरे दो पड़ोसी हैं, मैं अगर कोई तोहफा भेजना चाहती हूँ किसको भेजूँ, आपने फरमाया जिसका दरवाजा करीब है, जिसका दरवाजा यानी जो जितना करीबी है उसका हक उतना ज्यादा है, तो इसलिए हमसायगी ये भी इनके साथ भी एहसान का रवैया, आप कैटेगरीज आप लिखते जाएं कि किन किन के साथ एहसान करना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेहतर साथी अल्लाह के नजदीक वो है जो अपने साथियों के साथ खुश अखलाक हो, और पड़ोसियों में से सबसे बेहतर अल्लाह के नजदीक वो है जो अपने पड़ोसी से नेक सलूक करने वाला है, ऐसा ऐसा पड़ोसी जो कि खुद पेट भर के खाए और उसका हमसाया भूखा हो, अल्लाह ताला के नजदीक ये भी सख्त गुनाह की बात है, और साहिबी बिल जंब, पहलू का साथी, पहलू का साथी मतलब क्या, जो आपके साथ बैठने वाला, कंपेनियन, अब कंपेनियन मुफसरीन ने इसे मियां बीवी भी मुराद ली है, क्योंकि वो भी साथी है ना, सबसे पहला साथी तो इंसान की जिंदगी का ही साथी हो गया, उसके साथ भी एहसान, अब एहसान समझ आया, एहसान ये नहीं है कि वो मेरे साथ क्या करता है, आदमी का ये तो मेरे कपड़े इस्त्री नहीं करती लिहाजा मैं तो इसको कोई ना नफका ही नहीं देना, मैंने इसको अब नहीं कुछ दिया करना, और औरत कहे कि ये चूंकि मुझे तोहफे तहाइफ नहीं देता इसलिए मैंने तो इसका ख्याल नहीं रखना, ये एहसान नहीं है, तो मियां बीवी में एहसान का रवैया होना चाहिए, उनका हक देना है और उससे बढ़ के देना है, और इसके अलावा इसमें और बहुत से लोग आ जाते हैं, हर वो शख्स जो आप का साथ किसी तरह उसका आपके साथ साथ बनता है, अब हमसाए भी आपके हो गए ना, साहिब बिल जम वो तो पहले ही उनकी बात आ गई, मगर उसके अलावा कौन कौन है जिसके जिसका आपके साथ होता है, जिसका और उसका आपका साथ बनता है, अब आप देख लें चाहे वो आपके कोलीग्स हैं, आपकी क्लास फेलोज हैं, आपके ग्रुप के अंदर लोग हैं जिनका साथ है ना, या आपके आप कहीं सवारी पे बैठ के जाते हैं और रोजाना वो भी आपके साथ बैठे होते हैं, ये सारे आपके साथी हो गए, अब वो चाहे ईसाई हैं, चाहे यहूदी हैं, चाहे वो कोई भी है, लेकिन उसका हक है, ठीक है, जिसका साथ आपको मिला, आप जहां पे बैठते हैं, अब ऑफिस के लोग हो गए सारे आपके के नहीं हो गए इसमें, जहां पे भी आप जॉब करते हैं आपके और लोग हो गए जो आपके इर्द गिर्द वाले हैं जिनके साथ भी आपका दिन गुजरता है, सारे साहिब जम है, इनके साथ भलाई करनी है, तो अपने कोलीग्स के साथ, अपने साथियों के साथ, आपकी बाज लोगों ने इससे दोस्त भी मुराद ली है, दोस्त भी इसके अंदर आ गए क्योंकि वो भी आपके साथी है ना, तो दोस्तों के साथ भी अच्छा सलूक। पर हमारे हाल ये हैं कि दोस्त तो हम बना लेते हैं बड़ी खुशी से, मगर फिर उसके बाद उन्हीं दोस्तों की बुराइयां सारी दुनिया में करते फिरते हैं। वो दोस्त होने के नाते हमें उनकी कई बातें पता होती, तो हम उनकी बड़ी उनकी खामियां उछालते हैं। उसके घर में गई थी मैंने, ये देखा, वो तो ऐसी है, वो तो ऐसी है। अल्लाह अकबर। तो अजियतें तो आप भूल ही जाएं कि इनको हम कोई अजियत दे सकते हैं, इनके साथ तो एहसान करना था, और एहसान तो हक से भी बढ़ के है, तो फिर क्या करना है इनके साथ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह को वो बंदा बहुत पसंद है जो दूसरों के दिलों में खुशी दाखिल करे, यानी दूसरे का दिल खुश कर दे। कई लोग होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं किसी का दिल खुश कर देते हैं। और ये भी बड़ी एक क्वालिटी होती है, कई होते हैं दूसरों के दिल जलाते ही रहते हैं हमेशा, तो हम किन में से हैं? हमारे इर्द गिर्द वाले हमसे दूर भागते हैं कि हमारे करीब आना चाहते हैं, हमारे पास बैठना चाहते हैं, या हमसे कन्नी कतराते हैं कि जहां से ये आ जाए उधर से रास्ता ही बदल लो। कभी कभी हमें अपनी भी नेचर देखनी चाहिए ना। हम कहते हैं ना, हमारी तो कोई परवाह ही नहीं करता, दुनिया बड़ी मतलबी है, फलां है, ये वो, ठीक है सारा कुछ होगा, लेकिन आप ये बताएं कि आपके अपने अंदर कितनी ऐसी क्वालिटीज हैं कि कोई लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। अगर आप काट खाने को दौड़ते हैं, किसी के को हर वक्त कोई खामी ही बताते रहते हैं, उसको हमेशा कुछ लेट डाउन ही करते रहते हैं, वो ताना देते रहना, हमेशा उसके अंदर कोई फॉल्ट ही निकालते रहना, तो कोई क्यों आपके पास बैठेगा? ये एहसान की सूरतें नहीं है। इस तरह वबनि सबील मुसाफिर, मुसाफिर तो जो आपके साथ, हम कितनी दफा जहाजों से सफर करते हैं या गाड़ियों में सफर कर रहे होते हैं, अब हम कहीं ना कहीं तो सफर होता ही ना, जब आप घर से निकलते हैं कुछ सफर तो है, चाहे 4 फरलांग का सफर है, चाहे दिनों का सफर हो जाता है, लेकिन सफर होता है ना हमारा। अब उस सफर में जो हमारे साथ हैं, बाज लोग वो भी मुसाफिर हैं, हम भी मुसाफिर हैं, और बाज लोग हमारे मुल्क में आए होते हैं या हमारे शहर में कहीं से सफर करके आए हों, वो भी मुसाफिर हैं। जो अब हम कहें मैं तो खुद मुसाफिर हूं, मैं इसकी क्यों हेल्प करूं, नहीं, वो मुसाफिर होने के नाते आपको उसके साथ एहसान करना है। और आप किसी का बैग पकड़ सकते हैं, उठा के रख सकते हैं। अब जहाजों में कई दफा ऐसे होते हैं कि कई लोग होते हैं बूढ़े होते हैं, परेशान हो रहे होते हैं, उनसे सामान अपना ऊपर नहीं रखा जा रहा होता, आपके साथ आपका बेटा है, आपका भाई है, आप खामिंद है, आप उसको कह दें कि आप इसकी मदद कर दें, क्योंकि मुसाफिर का हमारे पर हक है, हमने उसके साथ एहसान करना, चाहे मुसाफिर को जानते हैं या नहीं जानते। हमने अब लोगों से, दूसरों से ये तरीके सीख लें, पहले हमारे मुल्कों में ये बड़े एक मैनर्स होते थे, अब भी शायद होते होंगे, कि बसों में इन जगहों पे अगर कोई औरत खड़ी हुई है तो मर्द खड़ा हो जाता था कि आप बैठ जाइए, लेकिन अब हम चूंकि बराबरी चाहते हैं, और वेस्ट में आने के बाद हमने ये तरीके सीख लिए कि नहीं, अगर औरत खड़ी हुई तो क्या हो गया, खड़ी हुई हमारे बराबर ही है, खड़ी रहे, फिर हम नहीं करते एहसान का रवैया। तो मुसाफिर होने के नाते उसके साथ एहसान, अगर आदमी ट्रेवल कर रहे हैं, औरतें हैं, उनके साथ कोई ऐसे मामलात हो रहे हैं, आगे बढ़ के उसकी हेल्प कर दें। कई चीजें नहीं उठा सकती वो, जहाज की मसलन अगर सीढ़ियां, उसके ऊपर चढ़ रहे हैं, साथ सामान पकड़ा हुआ है पकड़ लें साथ, कोई बच्चा पकड़ा हुआ है पकड़ लें साथ। तो ये है इब्ने सबील के साथ। और हमारे यहाँ अक्सर मुसाफिरों को तो वो तंग किया जाता है कि किसी तरह इनसे पैसे निकलवाए जाएं, और इनको इतना तंग किया जाए कि बस ये जहाज ना चढ़ने पाए, बस ऐसे की हाल की कर दिया जाता है। इसी तरह मुसाफिर वो भी है कि आप जिस वक्त रोड पे हैं तो आपके साथ और भी लोग हैं, वो भी मुसाफिर हैं, वो भी सफर कर रहे हैं ना, वो आपके साहिब बिल जम भी हो गए, पहलू के साथ ही भी हो गए, वो भी। अब इनके साथ भी एहसान करना, बाज दफा हम सड़क के ऊपर जब जाते हैं तो हमें लगता है कि सड़क हमारी मिल्कियत है, अब मैं ही जाऊंगी, अगर कोई हमसे आगे चला गया तो उसको इतना हॉर्न देंगे, बाज लोग गालियां देने शुरू हो जाते हैं, बाज लोग बुरा भला कहने लगते हैं, बाज बद्दुआएं देने लगते हैं। ये नहीं, इब्ने सबील के साथ हुस्ने इखलाक, एहसान, किसी को रास्ता दे दें, किसी को पहले जाने दे दें। कोई आपके साथ खड़ा हुआ है, वो भी मुसाफिर है, आप भी उसको पहले लाइन में आगे जाने दें, कोई बात नहीं, एहसान। ये नहीं कि गुस्से के अंदर आ गए, बहुत ही उसकी, आजकल आप देखते हैं ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि लोग ट्रैफिक के अंदर इतने गुस्से के अंदर आ जाते हैं कि उसकी वजह से भी लोगों को बाज दफा गोलियां मार देते हैं, बाज दफा और हर्ट कर देते हैं, कि रोड रेज बहुत है, जिसको रोड रेज कहते हैं, इसके भी बहुत इंसिडेंट्स होते हैं। आप देख सकते हैं इंफॉर्मेशन इसकी भी, कि लोग गुस्से में आ जाते हैं रोड पे आते हैं। तो मुसलमान को क्या सिखाया गया, तुमने तो गुस्से में आना ही, तुमने तो एहसान करना, वो काट के आगे चला गया तो कोई बात नहीं, गुस्सा ना करो, एहसान। अब ये रोड पे जाके भी याद रहेगा कि नहीं, या बस क्लास में याद है, उसके बाद बंद कर दिया तो बस खत्म, नोट्स भी बन चुके हैं। हाँ, रोड पे अब जब जाएंगी ना, तो अब ये याद रखना है, अब कहीं ट्रेवल करेंगी ना, सफर करना है, आपने पाकिस्तान जाना है, आपने इंडिया जाना है, उसके अंदर भी याद रखना है, ठीक है। इब्ने सबील आपके इर्द गिर्द बहुत सारे होंगे, इसीलिए इब्ने सबील को जकात भी आप दे सकते हैं, अगर यानी इतनी हद तक है उसका कि वो, यानी अगर कोई बेचारा ऐसा उस वक्त एक परेशानी में आ गया, उसका मतलब उसकी चोरी हो गई, उसने जेब काट ली उसकी, तब आप उसकी, वो बेचारा परेशान खड़ा हुआ है, उसका एहसास करना। हम ये सिर्फ बातें ना हज और उमरों पे याद रखते हैं कि ये अल्लाह के मेहमान है इनके साथ, अब तो खैर बहुत सारे लोग वहां पे भी नहीं याद रखते, इतना ऊंचा बोलते हैं या इतनी ऊंची कोई काम करते हैं कि दूसरे जो इर्द गिर्द सोए होते हैं, खास तौर पे मीना वगैरह में, उनकी भी नींदें डिस्टर्ब, उनको भी तंग करके रख देते हैं। तो नहीं, सब मुसाफिरों का ख्याल रखना, तो सफर कभी ना कभी तो करेंगे ना, तो उसके अंदर आपने इस आयत को साथ लेके जाना है अपने बैग में, जहां पे पैक करें और चीजें। वमा मलकत ऐमानुकुम, और जो तुम्हारे दाएं हाथ के अंदर है, दाएं हाथ के अंदर कौन, गुलाम लौंडियां तो हैं ही, लेकिन नौकर चौकर वो भी तुम्हारे दाएं हाथ के अंदर होते हैं, और आदमियों के अंडर तो औरतें भी हैं, उनके भी अंडर ही आती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त डेथ बेड पे थे ना, डेथ बेड पे, तो जो आखिरी बात आपने अपनी उम्मत को नसीहत की है ना, वो क्या है, अस्सला अस्सला वमा मलकत अईमानुकुम, नमाज नमाज, और जो तुम्हारे दाहिने हाथ के नीचे, यानी तुम्हारे अंडर लोग हैं। अब वो आपके ऑफिस के कोई चपड़ासी, कोई क्लर्क, कोई डोरमैन, कोई गार्ड, वो भी हो सकते हैं, आपके घर के नौकर चाकर भी हो सकते हैं, आपके घर में कोई जानवर आपने पाला हुआ, वो भी आपका ही, आपकी यानी अंडर है, आपके हाथों के नीचे, आप उसको खाना डालते हैं नहीं डालते, उसको भूखा छोड़े रखते हैं, उसको धूप में डाले रखते हैं, खुद कहीं चले जाते हैं, उसको पानी भी नहीं डाला हुआ, आप उसकी केयर नहीं करते, ये सब आपके माँ मलकत ऐमानों को, मैं इन सब के साथ भलाई का सलूक करना, अल्लाह अकबर, ये कैसा दीन है बताएं, ये कैसा दीन है जिसमें इतने लोगों के हकूक हैं, आप कहीं गुंजाइश निकलती है कुछ और, इनके इनके बाहर तो मुझे लगता है कोई है ही नहीं रहेगा, सारी इंसानियत ही इसमें आ गई ना, या तो कोई आपका दोस्त होगा, या कोई हमसाया होगा, या कोई यतीम होगा, या मिस्कीन होगा, या कोई आपके साथ सफर कर रहा होगा, या कोई आपके अंडर होगा, कोई ना कहीं तो कुछ ना कुछ, अपने से ऊपर वालों के साथ तो सभी अच्छा कर लेते हैं, उनके सामने तो चलती ही नहीं है, इसलिए सब उनके साथ तो खुश मिजाज ही होके मिलते हैं, असल बात यह है तुम अपने अंडर वालों के साथ कैसे हो, जो तुमसे नीचे हैं किसी सूरत में भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन बातें जिसमें होंगी ना, उसकी मौत आसान हो जाएगी, कमजोरों से नरमी करने वाला, वालदैन से हुस्ने सलूक करने वाला, गुलामों कनीजों नौकरों से यानी अच्छा सलूक करने वाला। तो बाज दफा हम इन इन जो सारे लोग हैं ना, मिस्कीन हैं या यतीम हैं, इनके साथ फिर भी अच्छा कर लेते हैं, कुछ तरस आ जाता है या कुछ, लेकिन हम सायों के साथ बातचीत ही नहीं करनी, उनको उनका ख्याल ही नहीं करना, साहिबे बल जम के साथ लड़ाइयां हैं, और वालदैन को तो कुछ समझते ही नहीं है, और वालदैन के लिए तो हमारे पास एक ही बहाना है, वो तो हमसे इतनी दूर है कि अब हम क्या कर सकते हैं उनके लिए, दुआएं तो कर सकते हैं ना, राबता तो उनसे रख सकते हैं ना, उनसे अच्छी तरह बात तो कर सकते हैं जब भी बात करें, और जो साहिब जम्ब है वो उनके साथ मिलते चुके रोज हैं, इसलिए उनके साथ भी ताल्लुकात अच्छे नहीं है, फिर रिश्तेदारों के अंदर हमारी इतनी मसले हैं कि बस उसके साथ ये नहीं, उसने मुझे फलां वक्त में ऐसा कर दिया, तो छोड़नी ही नहीं है बात ना, वो बात छोड़ेंगे तो एहसान करेंगे ना, बातें ही नहीं जब छोड़नी, बातों को दबाया हुआ है दिलों के अंदर कि कहीं भूले ना मुझे ये बात, उनको इतना रिपीट करते हैं, ताजा रखते हैं हमेशा, सबक चाहे भूल जाए कुरान का, रिश्तेदारों की बातें उनकी नहीं भूलती, तो वो हमें अजबर याद होती हैं, रात को भी उठा के सुनाने को कह दें, बिल्कुल हम सुनाएंगे। तो ये जब इतने यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं सारे के अंदर, तो फिर बताएं कि कैसे अल्लाह के प्यारे हम बनेंगे। ये तो बहुत प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे। इवन खादिम नौकरों के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी का खादिम उसका खाना लेकर आए तो तुम्हें चाहिए उसको साथ बिठा के खिलाओ। अगर नहीं बिठा सकते तो कम अज कम लुकमा दो लुकमे तो उसको दे दो। ख्याल तो करो कि उसने पकाने की गर्मी और तकलीफ उठाई है। हमारी काम वालियां बेचारियां रोटियां पकाती हैं, इतनी पसीनों में शराबूर हो जाती गर्मी में खड़ी में, और बेगम साहिबा एसी में बैठी में वो खाना लेकर आएगी और रख के चली जाएगी। जब तक बेगम साहिबा खाना ना खा लें, जो बचा होगा फिर उसके बाद देखेंगे अगर इनको कुछ देना है इसमें से ही देना है या तुम अपनी अलग दाल पका लो। अल्लाह अकबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये तक फरमाया तुम्हारे गुलाम भी तुम्हारे भाई हैं, गुलामों को भी कहा, ये तो फिर भी नौकर हैं, गुलाम भी फरमाया तुम्हारे भाई हैं। अल्लाह ने उनको तुम्हारा मातहत कर दिया, जिसके हाथ तले उसका भाई हो उसे अपने खाने से खिलाए, अपने पहनने में से पहनाए, और ऐसा काम ना उसे कराए कि जो उसके लिए मुशक्कत वाला हो। अगर ऐसा काम, मुश्किल काम उसको देना ही है तो खुद भी उसका साथ दे, फिर साथ खुद भी खड़े हो जाओ। इतना मुश्किल अगर तुमने उसको काम दिया तो अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हमारा दीन तो खूबसूरत है, लेकिन आज मुसलमानों के अंदर कितना ये अखलाक है, कितना ये किरदार है, ये देखना चाहिए। अब ऐसे अगर मुसलमान हों तो पूरी दुनिया में इस्लाम ना फैल जाए। लोग आके हमसे पूछेंगे फिर कि आप कौन सा दीन आपका है, हमें भी बताएं, हमने भी ऐसा बनना है। लेकिन इनमें से तो कोई चीज ही नहीं हमारे अंदर, तो लोगों ने हमारा क्या बनना है। बल्कि शायद गैर मुस्लिमों में इनमें ज्यादा, इन इन क्वालिटीज में से ज्यादा हूँ। मामला का ईमानुकुम का भी वो करते हैं, मुसाफिरों का भी करते हैं, कुलीग से भी अच्छे हो जाते हैं, ये करते हैं। लेकिन मुसलमानों ने तो बिल्कुल ही छोड़ दिया है, जिनके कुरान के अंदर ये बातें कुरान में है। इनमें तो कोई इख्तलाफ की भी बात नहीं है कि आप कहेंगे मेरे फिरके की ये बात नहीं है। इन अल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फखूरा। अल्लाह ताला को नहीं है पसंद वो जो अकड़ने वाला है, फखर करने वाला है। अकड़ता है किन बातों के ऊपर? अब मुख्ताल और फखूर के अंदर थोड़ा थोड़ा फर्क है। मुख्ताल है जहनी बड़ाई में मुबतला होना, जहन में उसको अपना आप लगता है मैं बहुत बड़ा हूं। फखर वो गुरूर होता है कि हकीकत में उतना नहीं है जितना अपने आप को दिखा रहा है। ठीक है। अच्छा आप देखें सुभान अल्लाह, कैसे कुछ बातों का बताया गया कि ये बातें हैं तुमने ये जो करनी है और ये बातें हैं जिनसे तुमने बचना है। अच्छा जो आपने बातें करनी है ना, उनमें कहीं ये नहीं है कि जैसे पूरी दुनिया में जो ह्यूमन राइट्स है ना वो किस बेस पे है? वो इक्वालिटी की बेस पे है कि सब मसावात हो, मसावात की बेस पे है। लेकिन इस्लाम में बराबरी का नहीं है, अदल की बात है, अदल की। कैसे? अब देखें दूसरी जगहों पे जहां पे ह्यूमन राइट्स की बात होती है वो कहते हैं माँ बाप और बच्चे इक्वल हैं। अब अगर माँ बाप तुमने अगर बच्चे को डांटा ना तो बच्चा भी पुलिस को कॉल करेगा और तुम्हें लेकर जाएंगे, क्योंकि तुम और बच्चा बराबर हो, सब तुम बराबर हो, तुम्हारे कोई नहीं है। रिश्तेदार है तो क्या हुआ, रिश्तेदार भी हो तो वो जैसे वो है वैसे ही तुम हो। इस्लाम कहता नहीं, किसी का हक बढ़ के है, वो हमसाया इसलिए उसका हक ज्यादा है, वो मुसलमान हमसाया उससे ज्यादा है, वो तुम्हारा रिश्तेदार है उससे ज्यादा है, तुम्हारे माँ बाप है तो तुम्हें डांट भी लेंगे, तो उनका हक क्या तुम्हारे ऊपर? अदल, अदल ये जो इन्होंने बनाया है ना, ये अदल से नहीं है, ये बस बराबरी बराबरी करते रहते हैं। वो मुख्ताल और फखूर अल्लाह को नहीं पसंद है। तो फखूर असल में अरबी में उस बकरी या गाय को कहते हैं जिसके थन जो है वो बड़े होते हैं मगर उनमें दूध कम होता है। यानी तुम वो चीज नहीं हो लेकिन बन बन के दिखाते हो, बस अपने आप को दिखाते हो कि मैं बहुत बड़ी चीज हूं और उसकी बड़ी अपनी बड़ाइयां करते फिरते हो। तो ये अल्लाह को नहीं पसंद, इससे बड़ी तो बात इसके बाद कहने की कोई जरूरत ही नहीं कि ये करना है कि नहीं करना। खुद पसंद शेख ही हो रहा। अब हम मजलिसों में बैठते हैं तो हमारे टॉपिक क्या होते हैं, मैं ऐसे, मैंने ये किया, मैंने वो कर दिया, मैंने ये बना लिया, मैं वहां चली गई, मैंने ऐसा कपड़ा पहन लिया, मेरे जैसा कोई नहीं, मैं इतनी अकलमंद, मैं इतनी समझदार, बस मैं। ये क्या है? मुख्ताल अकड़ने वाला, फखर करने वाला, शेखियां बिगाड़ने वाला, क्लोज है इनके माने। हाँ तो ये मेरा खानदान, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा खामिद, मैं, ये मुख्तालुन फकूरा नहीं है तो और क्या है? आज जब हम अपने आप को इतना अकलमंद समझते हैं कि मेरे मेरी तो अकल ही बस, मेरी अकल के आगे कोई ठहर नहीं सकता, जितना का मुझे पता है ना उतना नहीं किसी को पता, तो फिर मुझे बताएं कि और मुख्ताल और फकूर क्या होता है? किसी और ने तो तारीफ तो क्या करनी है, हम अपनी खुद ही तारीफें करते रहते हैं, अपनी बड़ाइयां बयान करते रहते हैं। तो जब तक ये चीजें किसी इंसान में हों, वो तो फिर ये सारे काम कर ही नहीं सकता जो पहले बयान किए गए हैं, वो तो फिर अपने आप को ही देखता रहता है, वो तो किसी को खातिर में ही नहीं लाता। तो हमें अपने आप को जरा देखना है, हम सोचते हैं ना अल्लाह मुझे पसंद करता है कि नहीं, पता नहीं अल्लाह को मुझसे मोहब्बत है कि नहीं, पता नहीं अल्लाह के हाँ मैं क्या मकाम रखती हूँ। होता है ना, सबको होता है दिल के अंदर ये होता है कि पता नहीं मुझे किसी तरह पता चल जाए कि मैं अल्लाह के हाँ क्या मकाम रखती हूँ। तो ये सोचने कि अगर मैं मुख्ताल और फखूर हूं ना, मानना तो उनमें से किसी ने भी नहीं, लेकिन अगर मैं मुख्ताल और फखूर हूं तो याद रखें इन अल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फखूरा, अल्लाह के हाँ मेरी नहीं कोई वैल्यू वहां पे, अल्लाह मुझसे कोई नहीं मोहब्बत करता। ये निकालनी होंगी चीजें, आज ही खुद के अंदर लेकर आए, ठीक है? खुद को बड़ी चीज नहीं समझने की जरूरत, तब जो बड़ी चीज समझेगा वो क्या रिश्तेदारों से अच्छा करेगा, वो अपने माँ बाप को क्या दर्जा देगा, वो क्या मामला कतई मानुकुम के साथ करेगा, वो तो खुद ही बड़ी चीज है, वो साहिब बिल जम अपने दोस्त है बाप के साथ कैसा होगा, तो हर वक्त जहां बैठेगा वहां पे शेखियां ही करेगा। तो अपनी ना गुफ्तगू को जांचें, उसमें से देखें मैं इतराने वाली बातें कितनी करती हूँ। जिस वक्त मैंने कोई ड्रेस नया खरीदती हूँ या मैं पार्लर गई हूँ और मैंने बाल सेट आज कराए हैं, उसके बाद मेरी तबीयत में क्या होता है और मैं चलती कैसे हूँ और मुझे कैसा लगता है, इतनी खुद पसंदी और इतना कि बस मेरे जैसा कोई है ही नहीं है, और ऐसा कपड़ा कोई ना पहने जैसा मैंने पहना हुआ है, और ऐसा बाल किसी के नहीं होने चाहिए जो मैंने बना ली है, और बस मेरे जैसा तो कोई भी नहीं है, ये अकड़ ही तो है। इसी तरह जब आप तैयार होके कहीं जाती हैं किसी मसलन औरतों की मजलिस है, अब मैं बस जैसी हूं ना वैसा नहीं कोई, तो ये है मुख्तालन फखूरा ही है ये। सुभानक अल्लाहुम्मा वबिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुनिए इन आयात की।
وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا